थैंक यू मधुर मैम आने के लिए एज एक्सपर्ट.
धन्यवाद.
आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट इट्स नेचर. बहुत बार ये पाया गया है कि हम बहुत ऐसे अचंभित फील करते हैं कि एक बच्चा छोटा था और वो धीरे धीरे कैसे बड़ा होता है, डेवलपमेंट चेंजेस उसमें कैसे होते हैं और कितनी जल्दी वो प्रोग्रेस करता है, कभी वो बच्चों जैसा बिहेव करता है, फिर हमारे देखते ही देखते किस तरह स्कूल जाता है, आगे जाता है,
जी
बॉडी चेंजेस होते हैं.
जी
तो हम ये जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट एक्चुअली में क्या है और ये किस तरह से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, क्या सीरीज़ ऑफ चेंजेस है
हाँ,
आपके.
क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारी पर्सनालिटी का, कि हम किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से हमारे अंदर वृद्धि एवं विकास होता है. शिक्षार्थियों जो सुन रहे हैं, उनको ये अच्छे से पता होगा कि अगर आपने देखा होगा कि एक जो नवजात शिशु होता है वो बिना सहारे के नहीं बैठ सकता, लेकिन एक 4 से 5 महीने के बच्चे को अगर हम सहारा दें खाद से, तो वो थोड़ी देर तक बिना सहारा देकर थोड़ी देर तक बैठ सकता है. और फिर अगर वो 8 से 9 वर्ष की उम्र में आता है, तो वो बिना सहारे के भी थोड़ी देर तक बैठ सकता है. तो इससे हम ये देखते हैं कि पहले हमें उसको थोड़ा सा सहारा देना पड़ रहा था और फिर बिना सहारे के भी वो बैठ पा रहा था. तो ये क्या है? ये है उसके अंदर जो वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ जो हो रहा है विकास हो रहा है. तो ये वृद्धि और विकास, जो कि 2 शब्द हैं, बट हम इनको कभी कभी इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये 2 शब्द हैं जिसका जो अंतर है मैं अभी बच्चों को बताऊंगी. तो अगर आप ये डिफरेंस देखें कि एक स्टेज ऐसी थी जिस वक्त वो बच्चा के अंदर जो चेंजेस थे वो अपनी एज के अकॉर्डिंग थे, और समय रहते रहते फिर वो और उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले जिसमें वो सेल्फ डिपेंडेंट भी धीरे धीरे हो रहा है, हो रही है. तो ये चीज़ है. अगर आप बच्चे और किसी व्यसक में आप कंपैरिजन करें, तो आप ये देखेंगे कि जो बच्चों का जो वृद्धि एवं विकास होता है और जो एक व्यसक के आप जो स्टेज पे वो पहुंच चुका होता है उससे आप कंपेयर करेंगे, उसमें भी आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे. तो ये क्या इंगित करता है? ये इंगित ये करता है कि जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो उसके अंदर जो वृद्धि प्रक्रियाएँ हैं वो वृद्धि और विकास की वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी को, पूरी पर्सनैलिटी को अटेन करता है.
ये वही वृद्धि और विकास है जिसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
कहते हैं.
अच्छा.
तो आप ये देखेंगे कि जो अर्ली स्टेजेस होती हैं एक बच्चे की, तो उसमें जो विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है. लेकिन आप जब लेटर स्टेजेस पे देखते हैं तो विकास होता तो है, लेकिन उसकी गति जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसके बारे में हम ग्रोथ कर्व में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. तो शिक्षार्थियों अगर हम बात करें, तो इस वक्त आप मनोविज्ञान विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ 11 जिसका नाम है विकास, इसका स्वरूप, आज हम इसके विषय में बात करेंगे. और पाठ पढ़ने से पहले आपको ये कम्प्लीटली जानकारी होनी चाहिए कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या जान पाएंगे. तो पाठ के उद्देश्य आपको एकदम क्लियर होने चाहिए. अगर आपको पाठ के उद्देश्य क्लियर नहीं है तो आपकी लर्निंग डायरेक्शन लेस हो जाएगी. आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो मैंने सीखा, जो मैंने लर्निंग अटेन किया, अभी मैं इसे यूज़ कहाँ करूँ. हर किसी लर्निंग का एक अंतिम उद्देश्य होता है कि वो मीनिंगफुल हो, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें. तो सबसे पहले आइए हम इनके पाठ के जो हमारे उद्देश्य हैं हम उनको समझ लें. तो सबसे पहला तो है कि हम वृद्धि एवं विकास में अंतर समझ पाएंगे. ये 2 टर्म्स हैं, इनमें क्या भेद है. दूसरा है विकास की अवधारणा तथा प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे कि क्या है ये विकास, इसके क्या क्या प्रक्रिया है, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे होता है बच्चों का विकास. फिर है विकास के सिद्धांतों की पहचान कर पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे उनकी, क्योंकि जो विकास है वो उसके कई आधारभूत प्रिंसिपल्स हैं जिस पे वो चलता है, तो हम उन्हें समझेंगे. और विकास अध्ययन के लिए जो मेन अप्रोचेस हैं डेवलपमेंट को स्टडी करने की, हम उनके बारे में आपको ब्रीफली बताएंगे. तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट के, और ऐसे बहुत सारे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. तो हमें इससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है विकास, उसके बारे में.
सही कहा आपने. तो शिक्षार्थियों, श्रोताओं, आज हम बेसिकली ये जानना चाहेंगे कि विकास क्या है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम किस तरह से ग्रोथ में और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये विकास को पढ़ने की, जानने की, समझने की क्या प्रक्रिया जो है वो साइकोलॉजिस्ट अपने आप में अपनाते हैं, जो हमें बताता है कि किस तरह से विकास किसी में होता है. तो इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम मैम पहले
वृद्धि एंड विकास के अंतर में हम लोग समझते हैं कि वृद्धि क्या है. हम साथ साथ यूज करते हैं वृद्धि एवं विकास, लेकिन अंतर है जो वृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको इंडिकेट करती है, जैसे हमारी वजन में बढ़ोतरी हो रही है, हाइट में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हमारे जो है ना वृद्धि के संकेतक हैं।
अच्छा,
क्वांटिटेटिव चेंजेस जो बच्चे की बॉडी में होते हैं। और जो विकास है वो बच्चे की अवधारणाओं, उसकी अभिवृत्तियों, उसके जो एटीट्यूड है उसमें जो चेंज आता है, हम उसको विकास कहते हैं।
ये बहुत ही अच्छी जानकारी मैम आपने दी, क्योंकि अक्सर हम ये पता नहीं लगा सकते, और हम सही में, क्योंकि बहुत सिमिलर टर्म्स होती हैं तो हम इन्हें एक साथ यूज़ करते हैं कि वृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं है। पर हाँ, वही जो आप कह रहे हो क्वांटिटेटिव और शायद क्वालिटेटिव चेंजेस जिस तरह से हमें होते होंगे, तो वो वृद्धि और विकास का अंतर।
तो विकास जो है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे की अभिवृत्तियों में हो रहे हैं, बच्चे के व्यवहार में हो रहे हैं। फिर दूसरा अंतर वृद्धि का, अगर हम इसी से समझ लें तो वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को उतनी आसानी से मापना इतना आसान नहीं है।
जिसे हम
वो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं और उनको हम इतनी आसानी से माप नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास टूल्स हैं जिसके से हम विकास को माप सकते हैं।
अच्छा।
फिर एक अंतर यह है कि सबसे बड़ा जो हमें वहाँ से दिख गया कि वो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं और ये क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, तो ये अंतर हमारा है। फिर विकास जो है उसके बहुत सारे आयाम होते हैं।
अच्छा,
हाँ, विकास के आयाम हैं। अगर हम बात करें तो कौन कौन से आयाम है विकास के, आयाम का मतलब एरियाज, किन किन स्पेसिफिक एरियाज में बच्चे का विकास हो रहा है।
अच्छा।
जैसे अगर हम बात करें फिजिकल मोटर डेवलपमेंट,
अच्छा, फिजिकल मोटर,
शारीरिक गत्यात्मक विकास,
अच्छा,
एक ही विकास होता है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा भाषीय विकास,
अच्छा, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट,
लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है,
और
फिजिकल मोटर डेवलपमेंट है। फिर है हमारा सामाजिक भावनात्मक विकास, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है। फिर है आर्ट एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन,
अच्छा,
कला तथा सौंदर्य बोध का विकास। तो ये डिफरेंट विकास के आयाम हैं जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।
अच्छा।
अगर हम विकास, हम कहते हैं विकास हो रहा है, तो विकास इन सारे आयामों में हो रहा है,
वो एक साथ होता है,
एक साथ हो रहा है। अच्छा। और एक दूसरे को प्रभावित करके हो रहा है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, और साथ साथ हमने थोड़ी सी जानकारी ली कि विकास के आयाम क्या हैं। अब जैसे हम विकास को जब पढ़ते हैं तो हम, हालांकि इस चैप्टर, इस जो लेसन है इसमें उतना डील नहीं किया गया है विकास के आयाम, ये इनका दूसरा पार्ट है, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर हमने बात की कि मैंने जैसे कहा शारीरिक गत्यात्मक विकास है, तो वो क्या है,
वो क्या
तो
मतलब
शारीरिक गत्यात्मक विकास हमारी शरीर की, शरीर के चलने फिरने से रिलेटेड है, उसके डेवलपमेंट, मांसपेशियों के डेवलपमेंट से रिलेटेड है,
जिसे हम मोटर डेवलपमेंट
कहते हैं। तो वो जो है हमारा जो है वो शारीरिक विकास है। अब जैसे शारीरिक विकास में जो आ जाता है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट आ जाता है, जिसे हम सूक्ष्म और स्थूल गतिविधियां कहते हैं। उनमें जो हमारे जो हम वो एक्टिविटीज बच्चा कर पाता है वो उन मसल्स के विकास के थ्रू हो पाती है।
अच्छा।
तो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत ये सब निहित है। फिर आ जाता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को अगर हम सूक्ष्म रूप से समझें तो बच्चे की सोचने, समझने, तर्क शक्ति से रिलेटेड जो आयाम है वो है हमारा संज्ञानात्मक विकास,
जिसे हम कॉग्निटिव
डेवलपमेंट कहते हैं। फिर एक बात करें भाषीय विकास की, तो फिर भाषीय विकास क्या है, भाषा का विकास। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो होता है वो पहले कुछ कुछ आ मा बा इस तरीके से शब्दों को प्रयोग करता है,
जिसे हम बैबलिंग साउंड्स,
हाँ, बैबलिंग साउंड्स भी कहते हैं। और उसके बाद जो होता है बच्चा अपनी पूरी लैंग्वेज एक्विजिशन करता है,
हाँ जी,
तो अपने आप को कम्युनिकेट कर पाता है। और हाँ। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आयाम है हमारे विकास के पहलुओं में से। तो भाषीय विकास, जिसमें बच्चा भाषा अर्जन करता है, हाँ। अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाता है दूसरे से, और एक करेक्ट लैंग्वेज जो भी उसकी है वो उसको यूज कर पाता,
मतलब
है।
अब बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन में भी एफिशिएंट हो जाता है, अपना मैसेज सामने वाले को समझा पाता है
धीरे धीरे। हाँ, तो भाषीय विकास आ जाता है। और अगर हम बात करें सामाजिक विकास की, सबसे पहले तो हमारा सामाजिक विकास हमारे घर से ही प्रारंभ होता है। हम अपने माता पिता, अभिभावकों, घर में अगर कोई भाई बहन है तो उसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, एक बच्चे का इंटरेक्शन होता है, उनको रिकोगनाइज करता है, तो वहीं से एक बच्चे का सामाजिक विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और भावनात्मक विकास भी साथ ही में स्टार्ट हो जाता है,
क्योंकि
हमें कौन प्यार करता है, हमें कौन प्यार नहीं, कोई कौन हमसे हमें डांट देता है या डर पैदा होता है, तो ये सारे जो चीजें हैं वो हमारी भावनाओं में आ जाती हैं। क्रोध है, डर है, प्यार है, तो ये सारी चीजें, तो बच्चे का जो ये सामाजिक विकास है एंड भावनात्मक विकास, ये भी हमारा साथ साथ बच्चे का स्टार्टिंग से ही हो रहा है। और सबसे पहले तो फैमिली, हम कहते हैं ना कि जो परिवार है वो पहली सीढ़ी होती है सीखने की, अधिगम की, सीखने की। तो उस तरीके से ये हमारा सामाजिक, फिर बच्चा जब अपने स्कूल में जाता है, प्री स्कूल में जाता है, पूर्व विद्यालय में, तो फिर वहां पे उसको जो अपना पीयर ग्रुप मिलता है, टीचर मिलती है, वहां से सीखता है, अपनी कम्युनिटी से सीखता है,
सोशलाइजेशन,
लोगों से सीखता है, तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हमारा ये सामाजिक विकास हुआ।
तो थैंक यू मैम, अभी तक तो जैसे आपने हमें जानकारी दी कि एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास में क्या फर्क है, एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है, दूसरा कौन कौन से डोमेन्स हैं, कौन से आयाम से, जैसे एक आपने मोटर फिजिकल डेवलपमेंट कहा, एक आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा, एक आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा, और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट,
फिर एक और भी अच्छा है, आर्ट एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन, सौंदर्य बोध का विकास, अपनी प्रकृति के प्रति, जो हमारा जो एक छोटा बच्चा अपनी प्रकृति के प्रति, जो कलर्स के प्रति है, आर्ट पेंटिंग के बच्चों का जो रुझान होता
जो
है,
बच्चे रुझान,
डांस म्यूजिक की तरफ जो बच्चों का रुझान होता है, वो हमारा आर्ट एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन का पार्ट बनता है। तो ये सारे ही आयाम जो है हमारे जो डेवलपमेंट है उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक छोटी छोटी डेफिनेशन समझना तो शिक्षार्थियों के लिए बहुत जरूरी था। तो अभी इसी पार्ट की कंटिन्यूटी में हम चलेंगे और बात करेंगे कि, तो अगर छोटे शब्दों में आपकी किताब के अकॉर्डिंग ही हम बता दें तो बनता है कि विकास जो होता है वो प्रगतिशील होता है, दिशात्मक होता है, एक डायरेक्शन में जो है विकास चलता है, और जो ये सारे परिवर्तन होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं। हम ये प्रिंसिपल्स में भी बात करेंगे किस तरह से कोहरेंट एंड ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, बॉडी एक ऑर्डर फॉलो करता है और अव्यवस्थित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहले हो जाएगा फिर वो जो उस वक्त होना था वो बाद में होगा,
मतलब एक ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो करना
है, एक पैटर्न है विकास का। तो ये विकास को हम ये बात करते हैं, जैसे अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे अभी अभी हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले बच्चे के साउंड जो बैबलिंग, उसके बाद वो प्रॉपर लैंग्वेज एक्विजिशन करता है,
मतलब ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात मेंशन करना चाहेंगे कि जो रेट है डेवलपमेंट का वो वेरी कर सकता है,
अच्छा।
क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन एक पैटर्न तो सारे बच्चों में सामान्य ही होता है, रेट डिफरेंट हो सकता है, कोई बच्चा एक उम्र में उस पड़ाव को पार कर लेता है लेकिन दूसरा बच्चा उस उम्र में वो पड़ाव को पार नहीं कर पाता, आगे पीछे थोड़ा बहुत रेट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया और उस एज ग्रुप में आने के बाद भी और उसके बहुत समय बाद भी बच्चा उस माइलस्टोन को अचीव नहीं करता है, फिर वो हमारा डेवलपमेंटल डिलेज में भी काउंट हो जाता है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम बच्चे को कैसा इंटरवेंशन प्रोवाइड करें कि हम उसकी जो डेवलपमेंट की जो गति है उसको तीव्र कर सकें,
और कोई भी अगर चेंजेस उसमें नहीं हो पा रहे तो उसे
हम किस तरह से, हमें पेरेंट्स की मदद से या टीचर की मदद से या जैसे कैसे भी, हम कैसे इंटरवेंशन बच्चे को प्रोवाइड करें कि वो अपना संपूर्ण विकास जो है वो करे। और शिक्षार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैंने आपको विकास के आयाम बताए हैं ये सारे मिलके बच्चे का एक सर्वांगीण विकास करते हैं। जब हम सर्वांगीण विकास, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, होलिस्टिक पर्सनालिटी की बात करते हैं, दैट मींस कि चेंजेस इन अ पॉजिटिव चेंज इन ऑल डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट लीडिंग टू अ फुल एंड बैलेंस्ड पर्सनालिटी। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बात करते हो ना कि बच्चे का संज्ञानात्मक, मतलब बच्चा मानसिक रूप से बहुत तेज है, लेकिन अगर बच्चा सामाजिक भावनात्मक विकास में पिछड़ रहा है तो वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं है। उसका जो आई क्यू है बहुत फास्ट है, अच्छा है उसका, वो उसको बहुत अच्छा ज्ञान है किताबों का, वो अच्छी चीजों से रिलेट कर सकता है, उसको पता है, लेकिन वो सामाजिक पहलू में पिछड़ रहा है, वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता, गुस्सा उसको बहुत जल्दी आता है, उसको नहीं पता कि मुझे सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, तो उस तरीके के जो है वो लैगिंग समय देखने को फिर मिलती है। तो जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक संपूर्ण सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो सारे आयामों का जो कंप्लीट एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट, हेल्दी डेवलपमेंट जो होता है वो उसमें शामिल हो जाता है।
तो हमने अभी जाना कि एक तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तो वो प्रोग्रेसिव होता है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो करता है, ऐसा नहीं होता कि पहले कुछ होगा, मतलब एक सीक्वेंस है, पहले बच्चा मामा करना ही सीखेगा और उसके बाद ही अपनी लैंग्वेज को फुली डेवलप कर पाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। और दूसरा हमने ये जाना कि जो भी हमारा विकास है वो होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, मतलब किसी एक आयाम में विकास नहीं हो रहा है और बाकी में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ,
इसके बारे में भी हम अभी थोड़ा बच्चों को बताऊंगी कि किस तरीके से ये है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये, अब सबसे पहले अब हमने जब ये समझ लिया कि वृद्धि एंड विकास में क्या अंतर है और विकास के कौन कौन से आयाम हैं और संपूर्ण विकास के से हमारा क्या मतलब है, तो उसके साथ ही बनता है कि विकास होता कैसे है, क्या क्या हो रहा है हमारी बॉडी में कि बच्चा विकसित हो रहा है,
प्रोसेस क्या है,
क्या प्रोसेस है। तो उसमें दो मुख्यतः दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और उनमें से हैं, एक तो होता है मैच्यूरेशन जिसको हम कहते हैं परिपक्वता,
अच्छा,
और दूसरा होता है बच्चे का जो सीखने का प्रोसेस है लर्निंग। तो जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है मैच्यूरेशन का और लर्निंग का, परिपक्वता का और सीखने का, अधिगम का,
अच्छा।
ये हमारा प्रोडक्ट है, इससे इस मतलब ये दोनों मिलके जो है हमारा विकास को
डिफाइन
करते हैं, मतलब या विकास की प्रक्रिया को चलाते हैं,
मतलब यही बताएंगे अगर आप में मैच्योरेशन हो रही है और लर्निंग हो रही है तो दैट मींस आप में विकास
हो रहा है। तो अब शिक्षार्थियों के मन में संभवतः एक प्रश्न होगा कि परिपक्वता क्या होती है।
हाँ।
परिपक्वता होती है, मैच्योरेशन होता है जो हमारे अंदर इनहेरेंट पोटेंशियल होता है उसकी अनफोल्डिंग, जो हमारे अंदर अपना जो अनुवांशिक पोटेंशियल है उसकी अनफोल्डिंग जो है वो मैच्यूरेशन कहलाती है, जो हमें हेरिडिटी अपने पेरेंट्स से मिलती है।
अच्छा।
और धीरे धीरे जब बच्चे का विकास होता है तो वो अनफोल्डिंग होती है। और लर्निंग क्या होती है, लर्निंग जब बच्चा समाज के सामाजिक वातावरण में आता है, अपने परिवेश में पलता बढ़ता है, तो जो समाज से सीखता है, जो वातावरण का प्रभाव, वो सामाजिक हो, भावनात्मक हो, फिजिकल हो, जिस भी एनवायरमेंट में बच्चा रह रहा है उसका जो इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ेगा और किस तरीके से बच्चा बढ़ता है उसको हम कहते हैं लर्निंग।
अच्छा।
तो एक तो काम कर रहा है हेरिडिटी फैक्टर्स,
जीन्स
काम कर रही है, हेरिडिटी जो हमें अपनी हेरिडिटी अनुवांशिकता से रिलेटेड है, और दूसरा है जो बाह्य कारण है जैसे वातावरण है,
एक्सटर्नल फैक्टर्स
हैं। तो ये दोनों मिलके जो है हमारा विकास को की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं।
इसका कोई एग्जाम्पल हम कैसे समझ पाएंगे कि
जैसे अगर हम बात करें, एक बच्चा अगर वातावरण के प्रभाव में आकर कोई चीज सीखता है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को कलर कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, तो मैं उसको कितनी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ उसको सीखने की। मैंने बच्चे को कलर्स प्रोवाइड कराए, मैंने बच्चे को एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करा। सबसे पहले अगर मैं सामाजिक ये फिजिकल वातावरण की बात करूँ तो मैंने बच्चे के अप्रोप्रिएट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। फिर सामाजिक वातावरण की, उसको एक अच्छी टीचर मिली,
अच्छा
ठीक है, उसको कलर्स मिले, एक बुक मिली काम करने के लिए, ये उसका वो वाला वातावरण। तो ऐसा एक परिवेश जब हमने बच्चे को दिया तो वो हुआ बाह्य वातावरण तो वो उससे सीखेगा, लेकिन वो उस सीखने की कैपेबिलिटी जो अपनी अनवंशिकता में लाया है,
हाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो उसी में छुपा है
वो कितना सीख पाएगा उससे, तो वो कहलाती है हमारी मैच्यूरेशन।
मतलब
मैं एक बहुत ही छोटे बच्चे को एकदम जो और बहुत ही जल्दी उसको कोई हायर लेवल का कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रही हूँ तब भी तो वो नहीं होगा, क्योंकि समय रहते धीरे धीरे उन जो पोटेंशियल बच्चे के अंदर है उसकी अनफोल्डिंग होगी।
अच्छा।
और वो कितनी मात्रा में अनफोल्डिंग होगी ये डिपेंड करता है कि उसकी किस प्रकार की जीन्स जो हैं वो अनुवांशिकता में उसे मिली हैं।
अच्छा।
तो ये डिपेंड करता है। और वातावरण, हालांकि हम लर्निंग को जो अनुवांशिकता का प्रभाव है उसको थोड़ा लिमिट कर सकते हैं, एक ऐसा माहौल किसी भी बच्चे को देके जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो।
अच्छा।
ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अनुवांशिकता का इफेक्ट बच्चे के ऊपर
रहता ही रहता है। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि एक तो मैच्योरेशन और लर्निंग, तो और उसका एग्जाम्पल ये है कि हमारी हम क्या सीखेंगे वो कहीं ना कहीं हम जीन्स में लेके आए होते हैं, लेकिन हम जीन्स का इफेक्ट भी कम कर सकते हैं अगर हम बच्चे को अच्छा एनरिच्ड एनवायरनमेंट देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जीन्स के कुछ इफेक्ट को ओवरकम भी किया जा सकता है।
और ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, मतलब बच्चा मैच्योर भी हो रहा है और उसको वातावरण के एनवायरनमेंट के भी संपर्क में आ रहा है, तो दोनों ही प्रोसेस मिलके बच्चे का विकास करें। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं वो साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। प्रभावित कैसे करती हैं अगर हम इस चीज को समझें, तो फॉर एग्जांपल आपने बच्चे के पास अनुवांशिकता से वो बहुत अच्छा मतलब उसके पास है, उसके पास पोटेंशियल है कि वो सीख सकता है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिला कि वो सीखे।
अच्छा।
क्योंकि बच्चे, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वो खेल गतिविधियों से सीखते हैं।
हाँ।
खेल गतिविधियों से ना सिखा के आपने उनको रटने जैसी प्रक्रियाओं से बच्चे के ऊपर लर्निंग को खूब इम्पोज कर दिया, डांटा, इस तरह, तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा? बट ऑब्वियस आंसर है इसका।
हाँ।
इसके बच्चे के अंदर सारी नकारात्मक चीजें ही डेवलप होंगी ना, चाहे वो कितना भी अपने अंदर वो पोटेंशियल, तो उसका वो पोटेंशियल दब जाएगा। तो हमें उसको एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो नर्चर हो सके, जब हम कहते हैं ना नर्चरिंग ऑफ द चाइल्ड, अनफोल्डिंग ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड, दैट इज नेसेसरी। तो ऐसे हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि बच्चा जो है अपने पोटेंशियल को ब्लूम टू द फुलेस्ट की जो हम बात करते हैं, अपने पोटेंशियल को अनफोल्ड, कहते हैं ना लर्निंग इज व्हाट unfolding of the potential inside, that is what. तो वो हमें जो है वो ऐसे इस चीज को समझना है और ऐसी चीजों के लिए हमें माहौल स्थापित करना है, वातावरण तैयार करना है बच्चों के लिए,
वो बहुत जरूरी रहता
जी है। शिक्षार्थियों, हम बात कर रहे थे कि विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वृद्धि है उसका एक कर्व होता है जो डिफरेंट स्टेजेस पे जो ग्रोथ कर्व कहते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि किस तरह से वृद्धि होती है पूरी एक लाइफ स्पैन में, तो उसको हम ग्रोथ कर्व कहते हैं। अगर हम उसको स्टडी करें तो अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रारंभिक 3 वर्ष होते हैं बच्चे की लाइफ के, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो स्टेज होती है, उसमें जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है।
अच्छा।
उसके बाद 5 से लेकर 12 वर्ष तक ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, जिसको हम प्लेट्यू स्टेज कहते हैं। फिर 12 से 18 वर्ष की अगर हम बात करें तो ग्रोथ स्पर्ट स्टेज कहलाती है, जहां पे वृद्धि फिर काफी तेजी से होती है।
अच्छा।
तो ये जो पीरियड है, जैसा कि शिक्षार्थियों को पता है, एडोलेसेंस का फेज होता है।
एडोलेसेंस का फेज होता है।
तो जो विकास है, मानव विकास है, उसमें एज के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेजेस विभाजित करी गई हैं। अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें स्टेजेस के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग स्टेजेस विभाजित हैं। जैसा उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो गर्भधारण से जन्म तक जो स्टेज है वो जन्म पूर्व है।
अच्छा।
फिर 0 से 2 साल तक हमारी कहलाती है शैशवावस्था।
हाँ।
फिर 2 से 3 तक है टॉडलरहुड।
टॉडलरहुड।
फिर 3 से 6 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था।
प्रारंभिक।
और इस अवस्था में अगर हम बात करें 3 से ये बर्थ से लेकर 6 तक जो वृद्धि और विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है।
हाँ,
तो इसमें इसमें जो है हमें बच्चे को विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां, ऐसा वातावरण देना होता है, पोषक आहार देना होता है, बच्चे को हेल्दी हैप्पी सेफ्टी इन्वायरमेंट देना होता है जिसमें बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। तो ये जो लाइफ की बर्थ से लेकर 6 साल तक की लाइफ की बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज है, इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का, जो अपने अपॉर्चुनिटी इस दौरान बच्चे को दी है वो उसकी पूरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इम्पैक्ट करती,
मतलब
है।
उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये
6 वर्ष जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
अच्छा।
और हम सभी को इस अवस्था की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने की आवश्यकता है। फिर 6 से 8 साल तक जो है वो हमारी मध्य बाल अवस्था आ जाती है।
अच्छा।
और 8 से लेकर 11 वर्ष तक हम बात करते हैं उत्तर बाल अवस्था की। फिर 12 से 18 आती है किशोरावस्था, जो कि मैंने अभी बताया कि ग्रोथ स्पर्ट स्टेज होती है वो। फिर हम 18 से 40 वर्ष में जब बात करते हैं तो वयस्कावस्था आ जाती है, एडल्टहुड आ जाती है। और फिर 40 से 65 में हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की,
ओल्ड एज।
हाँ। और 65 से बाद में हम जो बात करते हैं वो वृद्धावस्था की बात करते हैं।
पहले आया मिडिल एडल्टहुड, फिर उसके बाद
वो चीज, तो 65 वर्ष के बाद। तो अगर हम ये देखें तो जो मानव विकास है उसको एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेजेस में बांटा गया है। और ये जो बांटा गया है वो क्यों बांटा गया है, क्यों क्लासिफिकेशन है, ताकि हम हर एज ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें।
हाँ।
और उसी हिसाब से हम उनको ऐसा इंटरवेंशन दे सकें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे सकें कि अच्छे से विकास हो और एक हेल्दी हैप्पी पर्सनालिटी बने। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है।
तो मैम आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब हम ग्रोथ कर्व की बात करते हैं तो पहले तो डिफरेंट स्टेजेस लाइफ की पता होनी चाहिए। जैसे आपने बताया जो गर्भावस्था से लेके जन्म तक है वो है प्रीनेटल स्टेज, फिर 2 साल तक का है वो जिसे हम कहते हैं इन्फेंट सी, फिर उसके बाद जो आपने कहा कि 3 से 6 साल
तक जो है वो अर्ली चाइल्डहुड फेज आ जाती है हमारी। और अगर हम बात करें तो जो हमारा इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है और एडोलेसेंस है, ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है। बहुत ही तीव्र गति से हमारी इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड में है, लेकिन फिर इन तीनों में हमारी ग्रोथ हो रही है। जैसे अगर आप इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में बात करेंगे तो हमारा बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है, बच्चे का सोशियो इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट बच्चा उसी वक्त डेवलप कर रहा है। लेकिन इस तरह के डेवलपमेंट जो है हमारे उतना ओल्ड एज में या आगे जाकर उतने नहीं दिखेंगे
नहीं
आपको
हो।
तो हम सीखते तो हमेशा ही हैं, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो हम सीखते तो हमेशा ही हैं, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हम हमेशा विकसित होते हैं, हम हमेशा विकास करते हैं। लेकिन जो रेट है वो फिर वैरी करता है। जैसे अगर आप एडोलेसेंस फेज की बात करेंगे तो उसमें बॉडीली चेंजेस कितने रैपिड होते हैं,
जैसे हम प्यूबर्टी पे कहते हैं,
प्यूबर्टी पे कहते हो आप, तो वो है, वो वहाँ की करेक्टरिस्टिक्स है। और जो हमने अभी अर्ली चाइल्डहुड और पीछे की स्टेजेस की बात करी, वहाँ पे अलग करेक्टरिस्टिक्स है कि किस तरह का विकास हो रहा है।
एक आपने प्लेटू स्टेज के बारे में भी कहा कि वो कब से कब तक, 6 साल से लेकर 11 साल तक कि उसमें थोड़ा विकास जो होता है थोड़ी उसकी गति धीमी हो जाती है, उतनी तेज नहीं होती जितना ग्रोथ स्पर्ट शुरू के ईयर्स में या एडोलेसेंस
में होता है। तो ये था हमारा कि किस तरह से एज ग्रुप के अकॉर्डिंग विकास के विभिन्न स्टेजेस हैं। अब हम बात करते हैं कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्योंकि विकास एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हाँ। तो ये कई सारे सिद्धांतों पर से निर्धारित होता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला है विकास एक सतत एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।
अच्छा।
और कैसा है, परिवर्तनशील, चेंज देखने को आपको मिलेगा।
हाँ, वो जैसे
बट वो चेंजेस हमारे जो है वो क्वालिटेटिव हैं।
जैसे हम बच्चे में, एक छोटे बच्चे में जैसे डिफरेंट चेंजेस, आपने शुरू में बताया कि एक महीने का है तो बैठ नहीं सकता, चार महीने में वो थोड़ा बैठने शुरू कर देता है, लैंग्वेज डेवलप, तो मतलब वो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट बच्चे में होती जा रही है और वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट भी
हो रहा है। जैसे पहले जो बच्चा है अपने जो भावनाएं हैं उनको उस तरह से कंट्रोल, सोशली अगर हम बात करें तो वो बच्चा किसी के सामने भी टेंट्रम्स थ्रो करता है, गिर जाता है जमीन पर, गुस्सा करता है, चीजें फेंकता है, लेकिन अब आप जब बाद में उस स्टेज को देखे, बच्चे को देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो डिफाइंड होगा, वो कंट्रोल्ड बॉडीली रिएक्शंस होंगी किसी भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और इमोशनल रिएक्शंस।
वो इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चा समझने लगता है कि अब ये स्कूल है और ये प्रॉपर प्लेस नहीं है जहाँ पे मैं टैंट्रम थ्रो कर सकूं।
हम कहाँ पे इस चीज को डिफाइन करेंगे, ये विकास हो रहा है ना बच्चे के अंदर, जो हमें, हम जिसको एक लॉन्ग पीरियड में ऑब्जर्व करते हैं,
डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कैसे
डेवलप होती है। तो विकास जो है वो एक कॉन्टिन्यूस है और परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। फिर विकास जो है अनुक्रमिक है, मतलब उसका एक पैटर्न होता है।
हाँ, जो
जैसे एक बच्चा सबसे पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे सहारे के पकड़कर कुछ खड़ा होना सीखता है, और फिर खड़े होने के बाद चलना सीखता है। ये फिर मैंने जैसे पहले बताया था, रेट डिफर कर सकता है। एक बच्चा हो सकता है बहुत जल्दी चलना सीख जाए, और एक बच्चा हो सकता है बहुत देर में चलना सीखे। एक बच्चा हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी समझ ले, एक हो सकता है बच्चा थोड़ी देर में उस कॉन्सेप्ट को समझे। इसी तरीके से बच्चों की अभिवृत्तियों में भी चेंज होता है, जो एटीट्यूड है किसी चीज के लिए। हो सकता है आपको, किसी एक बच्चे को डांसिंग पसंद है, एक बच्चे को थोड़ा शांत रहना पसंद है। कई बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कई बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे, तो ये डिफरेंसेस तो हैं बच्चे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं, तो लेकिन जो विकास की जो एक क्रम है वो निश्चित होता है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पहले, मतलब रिवर्स प्रोसेस तो नहीं होगा ना,
जैसे
बच्चा पहले चल लेगा उसके बाद वो क्रॉलिंग करेगा।
जो आपने पहले कहा ऑर्डरली और कोहेरेंट
चेंजेस होते हैं, तो एक पैटर्न को फॉलो करता है, ऑर्डरली चेंजेस होते हैं। इसी के सीक्वेंस में हम बात करें तो विकास जो है वो दो दिशाओं में होता है। एक से होता है सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल है विकास का, और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस विकास का। तो शिक्षार्थियों ये समझेंगे कि सिफेलोकॉडल क्या होता है। सिफेलोकॉडल होता है मस्तिष्क से पैरों की तरफ जो विकास, क्योंकि बच्चे का जो पहले है वो
हेड
डेवलप होता है और उसके बाद नीचे के पोर्शंस डेवलप होते हैं।
अच्छा।
तो ये जो है हमारा मस्तिष्काधोमुखी प्रिंसिपल कहलाता है, सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल डेवलपमेंट का। और दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल, मतलब सेंटर से बाहरी तरफ, पेरिफ्री की तरफ विकास होता है।
हाँ, हॉरिजॉन्टल हम जिसे कह सकते हैं, सेंटर से बाहर,
सेंटर की बाहर की तरफ। तो ये जो होता है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल होता है, जिसको आप कहेंगे निकट दूरस्थ क्रम।
अच्छा।
तो विकास जो है हमारा इन दो दिशाओं में हो रहा है। अगर आप बच्चे के अंदर भी इन चेंजेस को ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्वेशन तो एक बहुत अच्छी स्किल है। तो और उससे आप चाइल्ड डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है तो उसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो मैं बता रही हूँ इस वक्त, इसको आप देख भी सकते
हैं। पेरेंट्स को हेल्प भी बहुत करता है जानने में कि क्या चीज है, किसमें बच्चा बढ़ रहा है, अगर कमी है तो इसे कैसे ठीक किया जाए।
जी, जैसे अभी हमने बात की थी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल हो रहा है कि तो बच्चा पहले क्या करता है, पहले क्रॉल करेगा, उसके बाद धीरे धीरे किसी चीज को पकड़कर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है। तो ये हमने बात करी थी किसमें, फिजिकल डेवलपमेंट में। अगर हम मेंटल डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होगा, उसमें भी तो यही पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, बच्चा पहले कैसे सीखता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से सीखता है। हाँ। पहले हम बच्चे को चीज हाथ में देकर दिखाते हैं, कॉन्क्रीट चीज देते हैं तब। हाँ। और उसके बाद वो अमूर्त थिंकिंग की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बाद में जाता है। हाँ। तो उसमें भी तो आप ये देख रहे हैं ना कि एक पैटर्न है, सबसे पहले कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहा है।
हाँ, जैसे बच्चा पहले किसी भी गोल चीज को समझने के लिए उसको अपने मुंह में डालता है या समझता है, हर एक गोल चीज उसको एक जैसे आकार की चीज उसे एक ही लगती है,
एक ही लगती
लेकिन
है।
बाद में वो डिफरेंशिएट करना
कर पाता है कि, कि कौन सा कैसे है।
हाँ।
तो ये जो हमारा होता है, फिर एक होता है जो विकास होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अभी आपने बताया था कि कोई भी चीज, कोई भी खिलौना, वो कोई भी खिलौना का कोई भी रूप है तो वो इसके लिए खिलौना ही होता है।
हाँ।
लेकिन वो बाद में कैटेगराइज करना सीख पाता है कि ये कौन सा खिलौना है।
हाँ।
जैसे पहले हाँ जैसे जितनी भी लाइक अगर
राउंड चीज है
फीमेल है वो सब मदर हैं,
वो मदर है
मदर हैं, तो उसके बाद वो डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये नहीं ये मेरी मदर है, ये मेरी दादी हैं, ये आंटी हैं, इस तरीके से डिफरेंशिएट वो बाद में
पहले
उसके लिए जो भी लाइक महिला जैसी कोई जो भी सामने आएगा उसके लिए वो माँ है, क्योंकि वो पहले जो उसके लिए सिंबलाइज करता है वो माँ टर्म से सिंबलाइज कर रहा है उसको, बाद में वो डिफरेंशिएट करना सीखता है
जनरल टू स्पेसिफिक
बाद में होता है हमारा। फिर है कि डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ना कि विकास एक ही दिशा में नहीं हो रहा है, बहुत सारे आयामों में साथ साथ हो रहा है। जब एक फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, उसी वक्त उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसी वक्त उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, और तभी उसकी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनती है, इंटीग्रेशन की तरफ ले जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर एक बच्चे का फॉर एग्जाम्पल बच्चा बीमार बार बार पड़ता है, बीमार रहता है, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स वो हैम्पर हो रहा है। तो अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है तो ये प्रभाव उसका अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्शन को, उसके सोशल डेवलपमेंट को भी वो डल रहेगा, मेंटली उतना वो अलर्ट नहीं होगा। तो यहाँ देखें तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, टीचर कौन सी एक्टिविटी, क्योंकि वो फिजिकली वीक है। और इस तरीके से अगर आप बच्चे का तो वो ग्रुप का पार्ट नहीं, मतलब अपने आप को बिलोंगिंग जैसी फीलिंग उसकी नहीं आएगी, तो विकास का, और इसके साथ साथ रहते रहते उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, डर, ईर्षा, रिजेक्शन की फीलिंग, ऐसे नकारात्मक जो है संवेगों का बनेंगे उसके अंदर। तो एक जो विकास का आयाम है वो दूसरे विकास के आयाम को बहुत ही प्रभावित कर रहा है।
जो कि आपने पहले भी मेंशन किया था कि होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चे की होती है, एक आयाम में होती है तो बाकी में भी साथ साथ होती है
और इन सबसे एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी बनती है। तो सारे जो आयाम है उसमें हेल्दी डेवलपमेंट होना जरूरी,
बहुत जरूरी होता है।
फिर एक विकास का प्रिंसिपल है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम। इस पे हम चर्चा भी कर चुके हैं कि परिपक्वता डेट इज मैच्योरेशन और लर्निंग, इन दोनों का जो है वो परिणाम जो है वो विकास है। इस सिद्धांत को हम अभी समझ चुके हैं। फिर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जो मैंने अभी बताया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं होते, किसी बच्चे को उसकी रुचि में, उसकी नीड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड वैल्यू, सब में डिफरेंस होता है। एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक ह्यूमन बीइंग, सब में बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी होती है।
जैसे आपने पहले बताया कि कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ देर से बोलना, मतलब बहुत देर से नहीं पर थोड़ा बहुत
वेरिएशन समय देखने को मिलते हैं। और हर बच्चे की रुचि भी एक जैसी नहीं होगी, हर बच्चे का इंटरेस्ट भी एक जैसा नहीं होगा। कई बच्चे जो है वो देख कर ज्यादा अच्छे से समझते हैं, कई बच्चे जो है मैनिपुलेट करके चीजों को छू कर, तोड़ मोड़ कर, जोड़ कर, इन सबसे ज्यादा अच्छा सीखते हैं। कई बच्चे जो है वो हमारे सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, है ना। कई बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा खेल में पता भी नहीं चलता लेकिन वो बहुत सारी लर्निंग कर लेते हैं। और कई बच्चों को हमें हो सकता है थोड़ा फोकस देके बिठाल कर चीजें करवानी पड़े, तो वेरिएशंस मिलते हैं। लेकिन विकास का जो क्रम है वो होता रहता है, सतत है और एक पैटर्न को फॉलो करता है,
कंटीन्यूअस डेवलपमेंट और कोहेरेंट, जो आप शुरू से हमें बता रही हैं
वो कंटीन्यूअस है और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिर एक और विकास का प्रिंसिपल है कि बच्चा संपूर्ण रूप से विकसित होता है, ये बात भी हमने बता दी है आयामों के साथ ही, कि सारे विकास का जो सारा एक साथ होता है, सारे पे हमें फोकस करना है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है, हेल्दी हैप्पी डाइट देनी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हमें क्लासरूम में अपॉर्चुनिटीज देनी है, और आगे जाकर भी वो एडोलेसेंस फेज की भी बात भी कर रहे हैं, तो आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। अगर हम बात करें तो बच्चा आजकल स्मार्ट बोर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सबसे ज्यादा अच्छा सीखते हैं, तो हमें वैसी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देनी पड़ेगी।
पेरेंट्स जो है वो ज्यादा अपने बच्चे पे वो कर रहे हैं कि ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, क्या करना है, सो दैट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। और भी कुछ विकास के आयाम इसमें है?
जी बिल्कुल जी, हम लोग विकास के सिद्धांतों के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कई सारे विकास के सिद्धांतों की चर्चा की। उसमें से अब एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो विकास होता है वो हमारा ईगो सेंट्रिसिज्म टू एलो सेंट्रिसिज्म की तरफ प्रोसीड करता है, बढ़ता है। अब ये क्या होता है, एक जैसे अगर हम बात करें तो जो एक बच्चा होता है, सबसे पहले उसका जो केंद्र, जो उसका केंद्रता होती है वो खुद की तरफ होती है, मतलब जिस तरह से वो सोच रहा है, वो सोचता है कि सारी सही है और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसकी जो सोच होती है वो आत्म केंद्रित होती है। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है तब वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करता है, दूसरे के विचारों को भी कंसिडर करता है, जिसको हम एलोसेंट्रिसिज्म कहते हैं।
ईगो सेंट्रिसिज्म सिर्फ अपने बारे में सोचना,
अपने पर्सपेक्टिव, हाँ अपने 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 बारे में अपनी दृष्टिकोण से सोचना कि अगर कोई भी चीज हो रही है तो वो मेरे लिए हो रही है, मतलब अपने हिसाब से करना। और दूसरे के पर्सपेक्टिव को जब हम ध्यान में रखते हैं तो वो हमारा, तो जो विकास है वो पहले बच्चा आत्म केंद्रित होता है, फिर धीरे धीरे वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी
समझने की
कोशिश करता है।
हाँ, तो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि पहले बच्चा कहीं पे भी रोने लग जाता है, इज्जत करता है, फिर जब, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में और अपने दृष्टिकोण से सोच रहा है। लेकिन जब वो स्कूल जाएगा तो वही समझेगा कि ये अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ गुस्सा किया तो मे बी टीचर नाराज हो सकता है, ये अप्रोप्रिएट चीज नहीं होगी, मतलब अब वो ऑल सेंट्रिस एलो सेंट्रिसिज्म की तरफ जा रहा है। तो यही उसमें शायद आएगा कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है। और इसमें कौन सा
एक और विकास का सिद्धांत है कि वो हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी की तरफ जाता है।
हाँ,
कि सबसे पहले जो होता है वो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, अपनी हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करा है, और धीरे धीरे फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनता है।
ये चीज है, छोटा बच्चा है वो किसी भी चीज के लिए अपने पेरेंट्स के पास
जाएगा, या जैसे अगर हम बात करें तो पहले वो अपनी पूरी बॉडी को यूज करता है किसी भी चीज के लिए करने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने स्पेसिफिक पार्ट्स को यूज करता है। तो वो जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हेट्रोनॉमी से ऑटोनॉमी की तरफ अग्रसर होता है। अब जैसे हमने विकास के सिद्धांतों के विषय में चर्चा की, अब बनता है कि विकास के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है, क्या करेंगे हम इस विकास के सिद्धांतों को जानकर?
ये बहुत बहुत ही जरूरी है,
हमें क्यों पढ़ा है? एक तो हमारा इससे हमको जानकर ये लाभ होगा कि हमें एज स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर एज में होती हैं। अगर हम बात करते हैं इन्फेंसी की, तो इन्फेंसी में बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं? अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की क्या आवश्यकताएं, या फिर वो अगर एडोलेसेंट स्टेज में है तब उसकी क्या आवश्यकताएं, या अगर वो बाद की स्टेज में प्रौढ़ावस्था या उससे बाद की स्टेज में है तो उनकी क्या आवश्यकताएं हैं।
तो जैसे हमें शुरू से हमें बता रहे हैं कि ये जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंगली, जैसे आपने पहले भी बताया कि हम बच्चे को समझ सकते हैं
हाँ, बच्चे को,
सो देट अगर कोई भी इंटरवेंशन की भी जरूरत है तो वो हम एक सही एज पे दे सकते हैं।
फिर दूसरी बात है, जब हमको इस चीज की समझ है तो हम वैसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे कि उसकी किस चीज में रुचि है या उसकी वो कौन सी स्टेज है, अगर उस स्टेज में बच्चे की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स क्लासरूम में अगर उसको एज ग्रुप पता है, एज ग्रुप करेक्टरिस्टिक्स पता है, विकास किस तरह से बढ़ता है, तो वो उसी तरह से ही एक्टिविटीज को जो है वो ऑर्गेनाइज, क्रियाकलाप ऑर्गेनाइज करवाएंगी। फिर पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चे को उसी हिसाब से उनकी जो नीड ग्रेटिफिकेशन होती है उसको कर पाएंगे, उनकी तरफ उस तरह से ध्यान दे पाएंगे। तो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो विकास के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को, उनके आयामों को समझ सके।
हाँ, क्योंकि जैसे कि हम शुरू से कह रहे हैं कि आयाम समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सो दैट एक कॉन्टिन्यूस और एक हेल्दी डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का की हो सके, होती रहे। तो मैम आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी इस बारे में, ये बता के कि पहले तो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या रहते हैं, जिसमें हमने 6 से 7 प्रिंसिपल्स को पढ़ा, जो कि हम शुरू से कह रहे हैं कि वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा बोलना सीखेगा और उसके बाद बैबलिंग साउंड निकालेगा, या पहले ही वो चलना शुरू हो जाएगा और फिर क्रॉलिंग करेगा, मतलब एक ऑर्डर वो फॉलो करेगा। दूसरा, आपने हमें बताया कि जो भी डेवलपमेंट होती है वो हमारी जनरल से स्पेसिफिक होती है, जैसे कि आपने हमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बच्चे के लिए हर एक फीमेल पहले माँ है, फिर बाद में, क्योंकि वो जनरलाइज कर रहा है, फिर बाद में वो स्पेसिफिक पे जाएगा कि नहीं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी दादी है, और ये कोई और है। फिर आपने हमें बताया कि डेवलपमेंट एक इंटीग्रेशन की तरफ लीड करता है, कि जो कि आपने पहले भी चर्चा में बताया था कि दैट मींस हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, एक डोमेन में डेवलप कर रहे हैं तो दूसरे में भी कर रहे हैं और वो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। फिर हम शुरू से ये जानते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, पर ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी बात हमारे को बताई कि जो रेट्स ऑफ डेवलपमेंट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो डिफरेंटली होते हैं, जिसपे आपने दो टर्म्स के बारे में बताया था,
सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल,
हाँ वो वाली, कि वो किस तरह से होता है। और आपने इसमें हमें ये भी बताया कि ईगो सेंट्रिसिज्म और ऑल सेंट्रिसिज्म क्या है, कि पहले बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और उसके बाद वो सबके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के अपना बिहेवियर को फॉलो करेगा। तो ये तो आपने हमारे को बताया था कि किस तरह से जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हैं, और इनको जान लेना इसलिए ज़रूरी है सो दैट, जैसे कि आप शुरू से बताते आ रहे हैं कि कोई भी जगह हमें अगर लैक भी दिखता है तो हम उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं,
प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। अगर डेवलपमेंटल डिलेज हैं तो अगर बच्चे ने विकासात्मक पड़ाव नहीं हासिल किए हैं तो आप उसके लिए इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, रेफरल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अब बच्चे को एक
ये जान लेना पेरेंट्स के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तो उसमें अगर उसको समय से दे दिए जाए वो चीज़ अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिल जाए, वो प्लेटफॉर्म बच्चे को मिल जाए तो हम उसको कवर कर सकते हैं।
तो इसलिए कि हमारा डेवलपमेंट क्या है, उसकी क्या नेचर है और डोमेन्स डिफरेंट डिफरेंट कहाँ कहाँ हम डेवलप करते हैं और प्रिंसिपल्स जान लेना क्यों ज़रूरी है। लेकिन हम समझते कैसे हैं कि डेवलपमेंट क्या हो रही है, कौन सी ऐसी अप्रोचेज हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमें बताते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होती है।
देखिए जो अप्रोचेज हैं डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए वो दो टाइप की हैं, क्रॉस सेक्शनल और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। अगर हम क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल होता है कि जैसे हम एक ही समय में हम डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं आप ये कह लीजिए। डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं लेकिन समय एक ही है, एक ही समय में हम उनको स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो है हमारा वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी।
मतलब क्रॉस सेक्शंस में हमने स्टडी कर ली है कि 3 साल के
चार
सिर्फ
साल
एक,
का
एक बच्चे को नहीं हम लेंगे, अलग अलग बच्चों को लेंगे और उनको पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट
3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, हमने एक टाइम में अलग अलग हमने देखा कि किस तरह से विकास हो रहा है, एज ग्रुप में बच्चों को विकास हो रहा है। तो जब हम उस तरह से पढ़ते हैं तो वो हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी आई एम सॉरी क्रॉस सेक्शनल है। और जब हम एक समय के दौरान
एक ही
बच्चे को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल। जैसे आपने एक बच्चा लिया, एक बच्चे को आपने उसके इन्फेंसी में स्टडी करा, उसी बच्चे को फिर जब वो हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, 3 का 4 का 6 का, इस तरीके से जब वो आगे अपने एडोलेसेंट स्टेज तक गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे हैं तो तब जो आप विकास की प्रक्रियाओं को स्टडी करते हैं, विकास को पढ़ते हैं, वो हमारी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल।
इसमें तो मैम बहुत पर्सिस्टेंसी चाहिए। हाँ, पर्सिस्टेंसी चाहिए इंडिविजुअल को पढ़ना है।
तो दोनों की मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। जैसे अगर आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करें तो वो हमारी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, सैंपल लूज करने का भी हमारा एक हो जाता है कि सैंपल डाइल्यूट हो सकता है।
मतलब कितने सारे बच्चों को हम देखते रहेंगे कि कौन कभी कोई कहीं जा रहा है,
तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हैं। दोनों की अपनी अपनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। उसमें आप पूरे विकास का किस तरह से हम बात करते हैं ना, निरंतर है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, एक स्टेजेस में होती है। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं तो पियाजे का भी जो है था वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी था। तो किस तरीके से एज ग्रुप से लेकर आप उस बढ़ते हुए बच्चे का विकास के क्रम को पढ़ते हैं तो वो है। तो जो विकास को जब पढ़ते हैं उसके कुछ तरीके भी हम कैसे पढ़ेंगे, उसमें से एक बहुत सर्वप्रथम है कि केस स्टडी। केस स्टडी के माध्यम से जो है हम व्यक्तिगत अध्ययन जो करते हैं उसके माध्यम से हम बच्चे की इनडेप्थ स्टडी करते हैं। केस स्टडी क्या होता है, किसी भी चीज की जब आप एक इनडेप्थ स्टडी करते हैं तो वो है हमारा केस स्टडी कहलाती है। वो एक बच्चा भी हो सकता है, कोई एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक ग्रुप एक वो भी हो सकता है। तो जब आप एक किसी एक चीज की बहुत इनडेप्थ स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, तो वो हमारी जो है वो केस स्टडी कहलाती है। तो ये केस स्टडी एक मेथड है। एक होता है इंटरव्यू शेड्यूल। आप अगर बच्चे का विकास को पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू भी प्लान कर सकते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। फिर एक होता है इंटरव्यू, मतलब आप साक्षात्कार ले सकते हैं ना, पेरेंट्स का पूछ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं कि बच्चे का किस तरह से डेवलपमेंट है, आप उनको कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी, क्या बच्चे में लैक है, इस उम्र तक उसने वो पढ़ाव हासिल करे थे कि नहीं करे थे, इस टाइप के आप इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चनेयर बना सकते हैं कि आप वो पेरेंट्स को दे दें, टीचर्स को दे दें, वो आपको फिल करके दे दें। तो इस तरह से आप प्रश्नावली भी बना सकते हैं।
ये एक्स्ट्रा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है कि किस तरह से हम जो डेवलपमेंट की रिसर्च जब हम
किस तरीके से
कौन से माध्यम हम अपना सकते हैं।
फिर एक रेटिंग स्केल होते हैं। रेटिंग स्केल में क्या होता है, पॉइंट स्केल होते हैं, हम उसमें एक कंटिन्यूम होता है, पॉइंट स्केल होते हैं, जैसे 3 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 7 पॉइंट स्केल बना सकते हैं। उसमें हम अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं और बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर से, जिनसे भी, जो उनके अभिभावक हैं, गार्जियन सर्टेन कम्युनिटी से आप रेट करवा सकते हैं. तो रेटिंग स्केल्स भी हैं. फिर बायोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चे के, आप उनसे कर सकते हैं कि बच्चे का किस तरह से रहा है. अगर मान लीजिए आपके पास लाइफ सैंपल है तो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट आप उससे पढ़ सकते हैं. उसके बाद एनेक्डोट्स होते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं. तो जो विकास है उसको स्टडी करने के भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं. और केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी के माध्यम से आप उसको अच्छे से
कर सकते हैं. तो मैम आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे शिक्षार्थियों को आज. और इससे पहले कि हम इसके अंत की ओर जाएं, मैं ये बताना चाहूँगी, एक थोड़ा समराइज करना चाहूँगी कि आज हमने क्या पढ़ा है. सबसे पहले तो हमने ये जाना कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव, कोहेरेंट और ऑर्डरली चेंजेस में होती है. मतलब वो एक पैटर्न फॉलो करती है डेवलपमेंट. और जो चेंजेस होते हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाते हैं और वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, कभी रिवर्स ऑर्डर में नहीं आते. दूसरा, चेंजेस जो होते हैं वो दो तरह की डेवलपमेंट एक्चुअली में होती है, मैच्योरेशन और लर्निंग. और इसी में आपने बताया कि मैच्योरेशन डिफाइन करेगी हम कितना लर्न कर सकते हैं, दैट इज़ हमने जीन्स से क्या एक्वायर किया है और हमारा एनवायरनमेंट क्या है. और जीन्स के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम एनवायरनमेंट को एनरिच कर सकते हैं
काफ़ी हद तक कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट तो रहेगा ही,
वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रहता है, वो तो जाहिर सी बात है. एक आपने बहुत अच्छे से बताया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, एक क्वालिटेटिव चेंजेस है, एक क्वांटिटेटिव चेंजेस है. दूसरा आपने बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक ये पैटर्न फॉलो करेगी, जनरल से स्पेसिफिक पे जाएगी, और एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हमेशा हमारे डेवलपमेंट पार्ट में रहते हैं. कोई किसी रेट से डेवलप करता है, कोई किसी और रेट से डेवलप करता है. डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेशन को लीड करती है, दैट मीन्स जो आपने कहा था होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है. और डेवलपमेंट को हम कैसे समझ पाते हैं उसके लिए हमने दो अप्रोचेस की बात करी, क्रॉस सेक्शनल जिसमें आपने कहा डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को एक समय पे स्टडी करेंगे, और एक है लॉन्गिट्यूडनल जिसमें एक ही बच्चे को हम उसकी इन्फेंसी से लेके डिफरेंट टाइम पीरियड्स तक स्टडी कर सकते हैं. और आपने हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानकारी भी दी कि हम किस तरह से टूल्स यूज कर सकते हैं, कि केस स्टडी ले लिया, इंटरव्यू शेड्यूल ले लिया, एनेक्डोट्स ले लिया,
क्वेश्चनेयर्स है हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल. तो इस तरीके से आप बच्चे के संपूर्ण विकास को समझ सकते हैं कि किस तरह से बच्चे का विकास हो रहा है और हमें क्या करने की जरूरत है.
बहुत ही अच्छा मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि डेवलपमेंट क्या है, उसकी क्या नेचर है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं. धन्यवाद मैम.
थैंक यू सो मच.